Bismillahirrahmanirrahim. Babun yadkhulul jannata sab'una alfan bighayri hisabin. Wa bihi qala haddathana Imran ibn Maysara qala haddathana Ibn Fudayl qala haddathana Husayn qala Abu Abdullah wa haddathani Usayd ibn Zayd qala haddathana Husaym an Husayn qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubayr fa qala haddathani Ibn Abbas qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam uridat 'alayya al-umam. فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كبير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محسن قال أدعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر قال أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة بخاري شريف من سے أبواب الرقاق پڑھائے جا رہے ہیں آخرت سے متعلق جو مضامین ہوتے ہیں ان کو ابواب الرقاق کہتے ہیں. ایک باب ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اس روایت میں یہ مضمون ہے وہ روایت بیان کریں گے امام بخاری. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں, قیامت تک آنے والی جو امتیں ہیں وہ حضور کو دکھائی گئیں. نبیوں کو جو فیوچر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے بعض مرتبہ, چونکہ جو فیوچر ہے وہ انسانوں کے اعتبار سے فیوچر ہے, اللہ کے اعتبار سے پرزنٹ ہی ہے, اس لیے اللہ پاک کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو میں نے دیکھا ایک نبی کو کہ وہ گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پوری امت ہے, اور کسی نبی کو میں نے دیکھا کہ وہ گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہے, اور کسی نبی کو میں نے دیکھا کہ وہ گزر رہے ہیں ان کے ساتھ 10 آدمی ہیں, یعنی ان کی امت کے صرف 10 آدمی, پوری امت 10 آدمیوں کی, اور کسی نبی کو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ میں صرف 5 آدمی ہیں. ایک نبی ہے جس نے پوری زندگی بیچارے نے محنت کی اور اس کے ماننے والے صرف 5, اور ایک نبی میں نے ایسا بھی دیکھا کہ وہ اکیلا ہی جا رہا تھا, کوئی تھا ہی نہیں اس کے ساتھ, پیغمبر ہے وہ بھی. پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے. میں نے کہا ہے جبرائیل یہ میری امت ہے؟ فرمایا کہ نہیں, لیکن آپ افق کی طرف دیکھیں, آسمان کی طرف دیکھیں. جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ تو اور بھی بڑا مجمع تھا. تو پھر جبرائیل نے فرمایا کہ یہ ہے آپ کی امت, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہیں ہی, ان کے آگے 70,000 ایسے ہیں کہ جن کے اوپر نہ حساب ہے نہ عذاب ہے. ان کے آگے جو ہیں اس پورے سواد عظیم سواد کثیر جو مجمع ہے بھی جو آپ کو نظر آ رہی, اس کے آگے 70,000 ایسے ہیں کہ جن پر نہ حساب ہے نہ کتاب ہے, عذاب ہے. میں نے پوچھا کہ کیوں؟ قال کانوا لا یکتبون, فرمایا اس وجہ سے کہ وہ داغ نہیں لیتے, ولا یسترقون اور منتر نہیں کرواتے, ولا یتطیرون اور شگون نہیں لیتے, وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ان جاہلیت والے اعمال اور خصائل سے وہ لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. زمانے جاہلیت میں مختلف قسم کے عقیدے تھے اور توہمات میں رہتے تھے, تو اس کی وجہ سے مخصوص قسم کے داغ پر عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر ایسا داغ لگا دیے تو یہ ہوتا, ویسا داغ لگا دیے تو یہ ہوتا. کچھ سند نہیں, کچھ نہیں. ویسے داغ لگانا علاج کے طور پر یہ ایک مستقل چیز ہے, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाग बेहतरीन इलाज है। तो फिजिकली तौर पर अगर इलाज के लिए दाग लगवाया जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जाहिलियत में जो दाग लगवाया जाता था वो अकीदे की वजह से लगाया जाता था, और अकीदे की बुनियाद दलील होना चाहिए, दाग के साथ में कोई अकीदा तो है नहीं। ऐसे ही मंत्र करवाना, रुकियात पढ़वाना, मुख्तलिफ किस्म के मंत्र और कलिमात वगैरह के जरिए से इलाज करवाते थे जमाने जाहिलियत में, जिसके अंदर अल्लाह के गैर से मदद मांगी जाती थी, शिरकिया कलिमात उसमें होते थे, जिन्नात से मदद मांगी जाती थी, शैतानों से मदद मांगी जाती थी, और बाद ऐसे होते थे कि उनके माना मुबहम से होते थे, समझ में नहीं आते थे कि क्या माना है इसके, लेकिन वो बस होता था। तो ये भी एक बेबुनियाद बात थी। इसके अंदर भी काबिल इस्लाह बात यह है कि जो कुरान और हदीस वाले अमलियात हैं, तावीज़ें हैं, रुकियात हैं, उनकी इजाज़त है, वो मना नहीं है, और वो तवक्कुल के ख़िलाफ़ भी नहीं है। तवक्कुल के ख़िलाफ़ वो रुकियात हैं जो ज़माने जाहिलियत में थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था कि ये तावीज़ों वगैरह और रुकियात वगैरह के बारे में आप क्या फरमाते हैं, इस्तेमाल करें या ना करें। तो हुजूर ने फरमाया, ला बासा इल्लम यकुम बिही शिरकुन, कोई हरज नहीं है, इल्लम यकुन फी ही शिरकुन, अगर उसमें शिरक नहीं है तो फिर कोई हरज नहीं है। तो जिसकी ममानात है वो शिरकिया है, और जिसकी इजाज़त है उसमें तौहीद पाई जाती है। बाद मरतबा लोग मजबूत अकीदा और सही अकीदा इसको कहते हैं कि जिन्नात को नहीं मानना, आफेक को नहीं मानना, जादू को नहीं मानना, तावीज़ों को नहीं मानना, बहुत सॉलिड अकीदे का आदमी है, ये सब चीज़ों में नहीं जाता, या मिलों मिलों के चक्कर में नहीं जाता, उसको सॉलिड अकीदा समझते हैं। वो जहालत वाला अकीदा है, वो सॉलिड नहीं है, वो गैर सॉलिड है, साल्ट है, साल्टेड है, वो उसमें नमक है ना, वो सही अकीदा है ना ये सही अकीदा है कि हर किस्म का जंतर मंतर तंत्र सही है। असल बात वो है, जिन्नात की एक हकीकत है, वो भी एक मखलूक है, वो कभी सताते भी हैं किसी को, कभी ऊपर आ जाते हैं, इंसानों के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि जिन्नात इंसान के अंदर पूरा घुस जा सकते हैं, हत्ता कि उसके रग में घुस जा सकते हैं। ये हदीस में है, इन्ना शैतान यजरी मजरद दम, जहाँ तक इंसान के अंदर खून जा सकता है वहाँ तक शैतान भी जा सकता है, हदीस शरीफ है। तो बाद में तो ये जिस्म के अंदर आ जाते, यही वजह है कि मर्द के ऊपर आ जाए तो, और औरत आ गई तो मर्द बिल्कुल औरत वाली बात करता है, और औरत पर आ जाए मर्द जिन तो फिर वो औरत मर्द वाली बातें करती है पूरी, और कुव्वत और ताकत में भी फिर वो जिन्नात वाली कुव्वत का मुजाहरा होता है, इंसान वाली कुव्वत का नहीं होता। 10-10 आदमी, 20-20 आदमी पकड़े तो भी संभलते नहीं। यहाँ हम गए थे मिनेसोटा, वो मिनियापोलिस, वहाँ पे एक कल्ले के ऊपर जिन आया हुआ था, वो दरख्त पे ऐसा चढ़ता था जैसे बंदर चढ़ता है, गिर 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 उसी पर चला जाता था। अरे किस्सा क्या, मतलब इंसान तो ऐसा नहीं चढ़ सकता ना, मगर वो बिल्कुल जैसे गिलहरी चढ़ता है ऐसे चढ़ जा रहा था, ऐसे चढ़ रहा ऐसा होता था। ऐसे वहाँ का एक आदमी यहाँ आया था, उससे जिन चढ़ा हुआ था, उर्दू बात करता था, कल्ला और उर्दू बात करे आप अंदाजा करो। उससे पूछा तू कहाँ का है, तो उसने कहा मैं भोपाल का हूँ। ये काला बोल रहा है कि मैं भोपाल का हूँ, उर्दू में बोल रहा है। तो फिर उससे पूछे उसके दोस्तों से कि इन्हें भोपाल का है क्यों बोल रहा है, तो कहने के 2 साल पहले भोपाल में इज्तिमा था, वहां गया था, वहां से आया हुआ है, उसके साथ चढ़ के आ गया बगैर टिकट लिए, वीजे की भी जरूरत नहीं थी। तो चढ़, ये होता है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खातून लाई गई जिसके ऊपर जिन सवार था, बड़ा परेशान कर रहा था उसको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, और मैं कहता हूँ कि तुम चले जाओ। फौरन ठीक होकर बैठ गई औरत। असल है तब ये इसका तो कोई खामखा की बात हुई है। हुजूर ने ऐसे खामखा हुजूर शोबदा कर रहे थे नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं होता। इसकी अपनी एक हकीकत है। जिन्नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जिन्नात ने अपना जो बयान दिया है तफसीली अपने कौम में जाके, वो सूरह जिन में पूरा तफसील मौजूद है उसकी। इंसानों को नुकसान पहुंचा देते हैं कभी कभी, अच्छे बुरे उनमें दोनों होते हैं, जैसे इंसानों में अच्छे बुरे होते हैं। बुरा आदमी शरीफ से शरीफ इंसान को बाज़ मरतबा सता देता है, ऐसे ही बुरा जिन भी शरीफ से शरीफ आदमी को बाज़ सता देता है। और शरीर तो शरीर है ही उसको, क्या तो ये कि साहब ये जिन्नात उन्नात को नहीं मानते, ये सालिट अकीदा नहीं होगा, ये जहालत है, मानना ही पड़ता है। मैं जादी उदू आसिफ वसिफ को नहीं मानता मैं, क्यों नहीं मानते भाई? ये चक्करों में नहीं जा, चक्करों में जाना नहीं जाना अलग बात है, बाकी ये कि ये एक हकीकत तो होती है। इसी तरह से उसके इलाज की जरूरत पड़ जाती है बाद में। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद जादू कर दिया था यहूदी औरत ने, सूरह फलक सूरह नास उतरी ही उस बेस पे है। 11 गिरहें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा दी थी यहूदी औरत ने, हुजूर के बालों में वो भी, और कंधे में लपेट के पत्थर के नीचे जो है ना रख दिया था उसको, दुआ पढ़ के उसके ऊपर। तो वही के जरिए से आपको पता हुआ, आपने एक आदमी को उतरवाया अंदर, पत्थर के नीचे से वो चीज निकाली, फिर ये 2 सूरे नाजिल हुए, फिर एक 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 आयत आप पढ़ते थे और एक एक बाल की गिरह खुलती थी। बाल की गिरह खोलना कोई आसान बात है? बाल को गिरह को क्या बोलते हैं? हाँ, नाट जो है ना बाल की खोलना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन वो खुल रही थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूकने पर। वैसे आपने कभी सीखा हो ना सीखा हो, लेकिन मुझे आता है बाल की गिरह खोलना। हम लोग बचपन में, बच्चे बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं ना, तो हमने सीखा हुआ है। कैसा ही बाल है, तो बारीक से बारीक बाल, उसकी गिरह कितनी भी सख्त रहा मैं खोल दूंगा। मगर मतलब ये कि वो कोई कमाल नहीं है, वो बच्चों को ट्रिक आती है उसको खोलने की, तो मुझे भी हमें भी आती है। सर वो वैसा नहीं खुल रहे थे, वो तो दुआ पढ़ने से खुल जा रहे थे। तो हुजूर पर जब इसका असर हो गया तो फिर दूसरों का क्या है? हो जाता बालों का नजर लग जाना। हुजूर ने फरमाया अलाइनु हक्कुन, नजर लगना हक है। एक रिवायत में है कि हुजूर ने फरमाया कि नजर बाज मरतबा आदमी को कब्र में उतार देती है, ऐसा हो जाता है। ऊंट को फौरन मार देती है नजर, एक मामूली आदमी की नजर ऊंट को मार डालती है। नजर में इतना जहर है, नजर से जहर ऐसे ही नफूस करता है जैसे सांप और बिच्छू से जहर नफूस करता है। इंसान के अंदर जो एक खास बहुत से असरात हैं जो इंसान के अंदर से निकलते रहते हैं, नजर से जहरीला मादा निकलता है, वो फासिद कर देता चीज को। तो नजर हुआ करती है, बीमारियां वगैरह जो होती हैं उस पर जैसे दवाओं का असर होता है, कलिमात का भी होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की तबीयत जब खराब हुई तो बाज़ मरतबा जिब्राईल अलैहि सलाम रुकैया पढ़ते थे, और रुकैया के लफ्ज़ से ही पढ़ते थे, ऐ नबी मैं आप पर रुकैया कर दूँ? हुजूर ने फरमाया कि हाँ कर दो। तो जिब्राईल अलैहि सलाम फरमाया कि बिस्मिल्लाह अरक़ीक, अल्लाह यशफीक, मिन कुल्ली शैइन युज़ीक, बिस्मिल्लाह अरक़ीक। जिब्राईल अलैहि सलाम का रुकैया है, जिब्राईल अलैहि सलाम का मंत्र है ये जो उन्होंने पढ़ा था हदीसों में, अल्लाह के नाम के साथ मंत्र पढ़ता हूँ मैं आप पर, अल्लाह तबारक व ताला आपको शिफा दे दे हर ऐसी चीज़ से जो आपको तकलीफ देने वाली हो, अल्लाह के नाम से मंत्र पढ़ता हूँ मैं, पहले बिस्मिल्लाह यरकीक बाद में बिस्मिल्लाह यरकीक, वो कलिमात का जोड़ है कुछ, वो रिश्ता ख़त्म हो जाता। तो साहबा में भी था, इसी वजह से साहबा में भी रहा रिश्ता। तो ये बात नहीं है कि इन चीज़ों को नहीं मानना तौहीद है, इन चीज़ों में जो गलत हैं वो नहीं मानना तौहीद है। क्योंकि ज़माने जाहिलियत में गलत का रिवाज था, जहालत आम थी, तो वहाँ तौहीद तो थी नहीं, इस वजह से जो कुछ भी चीज़ थी उसमें शिर्क ही दाखिल था, जहालत ही दाखिल थी। और जहालत के जरिए से जो मंत्र उंतर करके पैसे हासिल करते थे वो नाजायज भी होते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था। एक मरतबा हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन से फाके में थे, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, और इतनी आदत थी हजरत सिद्दीक अकबर को फाके की, यानी इतने ज्यादा टाइम फाके उन पर गुजरे हैं और गुजरते थे कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि 6 दिन तक तो फाके से रहने की आदत पड़ गई थी उनको। आदत जो है ना, वो अब लग जाए, आदत का अंदाजा करो कि आदत कब पड़ा करती है। 6 6 दिन तक फाके, 6 दिन तक कंटिन्यू कुछ नहीं, इसकी आदत हो गई थी। बहुत फाके करते थे सिद्दीक अकबर। एक मरतबा 3 दिन का फाका था, कोई तकलीफ मतलब कोई चीज़ मुयसर नहीं थी। एक गुलाम ने उनको दूध पेश किया, उनके गुलाम ने, उन्होंने पी लिया, तो गुलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि अबू बकर, जब भी मैं आपके पास कभी कोई चीज़ लाता हूँ तो आप हमेशा तहकीक करते हैं कि तू कहाँ से लाया। इस मरतबा आपने तहकीक नहीं की। उन्होंने फरमाया कि असल में मुझे भूख ज़्यादा थी, फिर मेरे को ये एतमाद था कि तू सही चीज़ ही लाता होगा और दूध में तो इतने ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने पी लिया, फिर फरमाया कि तुझे ये सवाल क्यों पैदा हुआ, आखिर बता कि तू लाया कहाँ से। तो उसने कहा कि मैं एक मरतबा एक कौम के ऊपर से गुजर रहा था, उसमें से किसी को कुछ हो गया था तो मैंने मंत्र पढ़ दिया था, तो उसका जुगल बाकी था, वो लोग मुझे कुछ देना बाकी था उसके बदले में। आज फिर जब मैं उधर से गुजरा तो उनके पास कुछ था नहीं, उन्होंने दूध पकड़वा दिया। जमाने के हालात होते हैं, मजदूरी में दूध मिल गया तो एक गनीमत है, सालन मिल गया तो एक गनीमत है। हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन बाद में बड़े बुजुर्ग बने हैं। पहले बड़े खराब हालात थे उनके, सूदखार थे बहुत, पैसों से पैसे लोगों को देते थे कर्जे पे और सूद खाते थे। तौबा जो है ना आदमी को बड़े से बड़ा बना देती है, सच्ची तौबा और अपने हालात की इस्लाह जो है ना वो घटिया से घटिया आदमी को बढ़िया से बढ़िया बना देती है। तो उनका सूद खाना इतना सख्त था कि अगर कोई गरीब बुढ़िया है, कमजोर है, जिसके पास कुछ पैसे देने को नहीं है, तो उसका सालन उठा के ला लेते थे सूद में। ये गुलाम ने कहा कि बस उनका उसकी उनकी जो मजदूरी मुझे देनी थी उन लोगों ने, वो उस वक्त उन्होंने नहीं दी थी, आज मैं उस कबीले पे से गुजर रहा था, उन्होंने ये दूध दे दिया, तो मैंने सोचा कि अपने आका ही को पिला दूँ थोड़ा सा, तो मैंने पिला दिया। बस सिद्दीक अकबर की तो हालत ख़राब हो गई, कहने के नादान आदमी पहले तूने क्यों नहीं बताया। अगर सिद्दीक अकबर उसको कह करके निकालने लगे, 3 दिन के फाके के बाद में चंद घूट अगर दूध पेट में गया तो निकलता, वो निकल ही नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने उंगलियां डाल के उसको कई करने शुरू की और इतना ज्यादा उन्होंने उसमें गुलू किया, मुबालगा किया कि खून के असरात आने लगे। तो लोगों ने कहा कि एक तो आपको मालूम नहीं था, दूसरे ये कि जरूरत के वक्त में तो नाजायज चीज भी जायज हो जाती है, तीसरे ये कि उसने जो पैसे दिए उसमें जो मंत्र पढ़ा था ये भी कोई जरूरी नहीं कि वो हराम चीज ही पढ़ा था। तो फिर अब यह है कि आपको बाद में मालूम हो, आप इस्तगफार कर लीजिए। कहने के नहीं, अबू बकर से ये नहीं हो सकता कि उसके पेट में हराम लकमा हो। फरमाया कि अगर ये दूध निकालने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी तो मैं दे दूंगा, मगर ये मेरे पेट में नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने हुजूर से सुना है कि जो लकमा हराम पेट में जाए और जिस्म का जुज बन जाए तो फिर जन्नत उसका हक नहीं रखती, जहन्नम ही उसका हक रखती। जहन्नम कहती कि नहीं, वो मेरी चीज़ है, जन्नत में नहीं रह सकती। सन्ना रोला भी जन्नत के लिए एक जिस्म है मखसूस कि कौन सा जिस्म जा सकता है, जहन्नम के लिए एक जिस्म है कि कौन सा जिस्म जहन्नम के लिए बनता है। तो जो हराम लुकमा पेट में जाता है और वो जुज्वे बदन बन जाता है तो फिर जन्नत एक्सेप्ट ही नहीं करती उसको, जहन्नम ही कबूल करती है उसको। कहा मैंने हुजूर से ये सुना हुआ है, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि मेरे पेट में ये रह जाए। अगर अबू बकर को इसके लिए अपनी जान देनी पड़े तो दे देगा, मगर ये पेट में नहीं रह सकता। ये उसको निकाल के ही छोड़ा उन्होंने। उलमा ने इसकी शरह में यही बात लिखी है कि चूंकि वो गुलाम जमाने जाहिलियत का मंत्र पढ़ा, इसलिए उसका जौल जो है ना वो हराम होगा, इसलिए कि जमाने जाहिलियत में जितने मंत्र राज थे वैसे नाजायज थे। और इसी से उलमा ने यह बात भी लिखी है कि अगर इस्लामी किस्म का कोई आदमी रुकैया करे और तावीज वगैरह का करे और उस पर कोई उजरत ले तो वो जायज़ है, उसकी इजाज़त होती है। मगर उलमा की दो जमातें हैं इसमें, एक जमात कहती है कि इसको पेशा नहीं बनाना चाहिए और लेना नहीं चाहिए, ना पेशे के तौर पर ना गैर पेशे के, मुआवजा लेके देना गलत है। और उलमा की एक जमात इसके कायल है कि बाज़ाब्ता मुआवजा लेके देना जायज़ है। अक्सर उलमा जवाब के ही कायल हैं, मगर न लेना ही बेहतर मालूम होता है। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके खुलफा वगैरह न लेने वाले फतवे को तरजीह देते थे कि लेना गलत है। वैसे सहाबा से एक मरतबा साबित है, सहाबा से साबित है एक मरतबा सहाबा इकराम का एक काफिला जा रहा था। सहाबा इकराम के पास खाने पीने की चीज़ ख़त्म हो गई थी, तो एक कबीले वालों के पास से गुजरे, उनसे कहा कि तुम कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करते। तो कबीले के सरदार को सांप ने काट लिया, तो एक सहाबी ने कहा कि मैं इसका मंत्र पढ़ दूंगा, मैं इसका रुकैया कर दूंगा। तो कहने लगे हाँ कर दो। तो कहने लगे एक शर्त है, क्या? कि तुमको इतनी बकरियां देनी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा हो गया तो हम दे देंगे। कहने लगा हाँ ठीक है। उन्होंने पढ़ दिया, वो अच्छा हो गया, जहर उतर गया उसका। तो उन्होंने उस एक मरतबा पर 40 बकरियां ली थी उससे, उसकी उस उजरत के अंदर 40 बकरियां ली उन्होंने। वो चूंकि पूरे कबीले को खाने का था, पूरे काफिले को खाने का था, वो 40 बकरियां काट के खा गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी पहुँच कर, उन्होंने फरमाया बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं। उनसे सब साहबा ने पूछा कि तुमने क्या किया था, सब तो साथी हैं हम, आपको जो आता हमको आता, तुमने किया क्या था? कहने लगे कुछ भी नहीं किया था, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के थक गया था। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के फूका था, सांप का जहर उतर गया, यकीन की बात होती। तो उससे उलमा इजाजत का मसला निकालते हैं, लेकिन जो उलमा इजाजत नहीं देते हैं वो कहते हैं कि साहबा ने कभी इसको ऐसा आदत नहीं बनाई हुई थी, भाई बाई चांस रास्ते में एक बात पेश आ गई थी जरूरत की, इसलिए उन्होंने वैसा किया था, वरना सब कोई थोड़ी दुकान खोल के बैठे हुए। इसलिए वैसे आदत बनाने को उलमा पसंद नहीं करते। ताहम यह है कि फी नफ्स ही बाहिशत है, मजमू ही उसमें गुंजाइश बहुत है। तो ला यस्तरकून के मफहूम में ये दो बातें शामिल हैं असल में, जिनको पूरी बात मालूम नहीं होती वो कन्फ्यूज होते हैं। जितने सलफी गैर मुकलद अहल हदीस के टाइप के लोग हैं उनके अंदर गलत फहमी यही है कि वो इसको तौहीद समझते हैं, जिन्नात के कायल नहीं होना, आसिर के कायल नहीं होना, असरात के कायल नहीं होना, जादू के कायल नहीं होना, दुआओं वगैरह के लिखने का, दुआओं वगैरह के पढ़ने का, कि ना उसको लिख के लगा सकते हैं ना उसको पढ़ सकते हैं, बस ये सब फजूल है और ये सब जो है ना जाहिलों ने बनाई हुई है, तौहीद के खिलाफ है ये। असल में ये तौहीद के खिलाफ नहीं है ये चीज़, वो उनके नादानी की वजह से, वो जानते नहीं बेचारे उस बात, और ये उनका सबसे बड़ा फॉल्ट है कि कुरान और हदीस उनकी समझ में आता नहीं। क्योंकि कुरान और हदीस की फहम के लिए कुछ चीज़ है, जब तक वो आदमी में एबिलिटी नहीं होगी तो वो कुरान समझ में नहीं आता। बोलता आदमी कुरान के लफ्ज़ को है या बोलता, अब इसी से ला यस्तरकून के लफ्ज़ से वो अपनी बात बोलते हैं और ये सारे किस्से जो हदीसों में हैं सब झुठला देते हैं, फिर उसका क्या मतलब बनेगा? फिर हुजूर भी झूठे नौज बिल्ला, साहबा भी झूठे नौज बिल्ला, सारे यहाँ से वहाँ तक चक्कर चलता है। फिर उसके बाद उनको पता नहीं चलता कि हमारी बात का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ऐसा हो जाता है। तो ये तौहीद के खिलाफ नहीं होती। हाँ, इसमें दूसरा जो हिस्सा है जिसमें कि अल्लाह के गैर से मदद ली जाती है, शैतानों से मदद ली जाती है और तवहुमात से काम लिया जाता है, वो गलत है और उसी की नफी की गई। और हदीस शरीफ का मफहूम यह है कि जिनके ईमान में कमाल होगा, खुलासे हदीस ये है कि ला यस्तवून वला यस्तरकून वला यतफय्यरून, शगुन नहीं लेते और रुकयात नहीं करवाते और दाग नहीं लगवाते। इसका मतलब यह है कि बेबुनियाद अकीदे नहीं रखते और अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं, और तवक्कुल जो है ये ईमान के कमाल से ताल्लुक रखता है। तो मालूम यह हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि कामिलुल ईमान जो लोग हैं, कामिल ईमान जो लोग हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा, और ये 70,000 होंगे खास तौर पर शुरू में, जो पूरे का पूरा लश्कर है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का, उसके सामने के हिस्से में 70,000 का एक ऐसा ग्रोह होगा जिनसे अल्लाह हिसाब नहीं दे लेगा, ना उन पर अजाब होगा, और वो अपने रब पे भरोसा करने वाले होंगे। ऐसों ऐसे 70,000 को तो अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल फरमा दे। ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और आपका शरफ और आपकी अजमत का अंदाजा करो कि हुजूर ने देखा कि कोई नबी अकेले जा रहे हैं, कोई किसी के साथ खाली 5 हैं, किसी के साथ सिर्फ 10 हैं उम्मतियों में, किसी के साथ 20 हैं उम्मतियों में, किसी के साथ छोटी सी जमात है, सिर्फ आपने एक बड़ी जमात देखी सवाद आजीम, जिसके बारे में आपको गुमान हुआ कि शायद ये मेरी उम्मत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि खाली 70,000 तो उसमें के ऐसे हैं कि जिनके पर हिसाब ही नहीं होगा, और ये कामिलुल ईमान लोगों के लिए हुजूर ने ये भी बता दिया। तो अगर आदमी अपने ईमान में कमाल पैदा कर ले तो वो इन 70,000 में शामिल हो जा सकता है, और अगर क़यामत के दिन ऐसा कोई ऐसी ऐसा कोई चांस मिल जाए कि जिसमें हिसाब देना ना पड़े, सबसे ज्यादा वो चीज़ तरजीह देने की है कि हिसाब देने की नौबत ना आए, सीधा जन्नत में चले जाओ, तुम मुझसे क्या हिसाब किताब। और आदमी दुनिया में कमा सकता है, वो चीज़ कोशिश कर सकता है कि ईमान में अपने कमाल पैदा करे। फिर ईमान के कमाल में दो चीजें हैं, एक ईमान इजमाली और एक ईमान तफसीली। ईमान तफसीली कामिल जो है वो सिर्फ मशायख के पास होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मशायख के काम की चीज है बस। ईमान तफसीली हो और कामिल हो, ईमान इजमाली कामिल ये और सबको बहुत बहुतों को भी हासिल होता है। और ये लोग जो ईमान और तौहीद की बात करते हैं, जिनका जिक्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, वो बेचारों के पास है तो बहुत से अकीदों में ही गड़बड़ है उनकी। ईमान कामिल की तो बातें करते हैं लोग, खाली उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हैं। इस वजह से ये बात भी जहन साफ कर लेने की है, जहन से साफ कर लेने की है कि आज सलफी और गैर मुखलद वगैरह के लोग जो अपने को तौहीदी समझते हैं, उनकी तौहीद में बहुत खलल है, उनके नहीं अकीदे पक्के पक्के, बड़े गलत अकीदे के लोग हैं, उसमें उनके अकीदे में गड़बड़ बहुत आ गई है, सॉलिड नहीं है उनके अकीदे, बहुत कंफ्यूज हैं वो लोग, बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूज हैं। बल्कि मैं अपने तजिए में ये कहा करता हूँ कि बदतमीज़ी का नाम तौहीद रखा हुआ है उन्होंने, उनके पास बदतमीज़ी तौहीद को कहते हैं, बदतमीज़ी को तौहीद बोलते हैं लोग। हुजूर के साथ बदतमीज़ी करो कि ये तौहीद की बात है, अल्लाह वालों के साथ में बदतमीज़ी करो कि तौहीद की बात है। भाई बदतमीजी अलग चीज है, तौहीद अलग चीज है। एक आदमी बेचारा खड़े होकर सलाम पढ़ रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने, तो उसने मोहब्बत में कहा कि सरकार के रोजे, आप उस जानने के लिए होता ना, पहली मरतबा आया था, उसने कहा कि किधर है क्या है, कहने के चला गया, बड़े मिट्टी के तोड़े पे से क्या खड़ा हुआ है, मेरे सामने कहा एक सूरती ने कि मिट्टी के ढेर पे क्या खड़ा हुआ है, निकल आ गए। तो इसको उन्होंने तौहीद समझा हुआ, ये तौहीद है अल्लाह वालों की, जो अल्लाह वाले हैं वो जाहिर है कि अल्लाह तो नहीं है वो, ना अल्लाह ताला के लिए जो काम है उनमें से किसी काम के वो मुस्तहिक हैं, उनसे मांगना नहीं चाहिए, उनको सजदा नहीं करना चाहिए, उनका तवाफ नहीं करना चाहिए, ना उनको करना चाहिए, ना उनकी कब्र को करना चाहिए। तौहीद अलग चीज़ है, बकिया इनका अपना एहतराम है अपनी जगह पर। वरना हुजूर ये क्यों फरमाते हैं कि मन आदाली वली फकत आजम तो बिल हरफ, जो किसी जो कोई मेरे वली से दुश्मनी रखेगा मेरी तरफ से ऐलान जंग है। ये क्या मतलब है इस बात, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुक, या अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगता हूँ और आपके महबूबीन की मोहब्बत मांगता हूँ, जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत दीजिए। हुजूर ने ये दुआ सिखाई, क्यों सिखाते हुजूर, अल्लाह वालों का एहतराम बहुत ज़रूरी है, उनकी इज्जत बहुत ज़रूरी है, उनका इकराम ज़रूरी है, तौहीद अपनी जगह पर है, और उनकी इज्जत और एहतराम में ऐसा गुलू करना कि उनको सजदे के काबिल करार देना, तवाफ के काबिल करार देना, करीब से दूर से मांगना, उनकी कब्र पे जाके मांगना, ये दूसरे जो अल्लाह वालों को मानने वाले हैं ये आगे जाते हैं, ये शिर्क है, वो भी गलत और वो भी गलत, बीच का रास्ता सही है इसमें। उनको मानो लेकिन ऐसा मत मानो कि अल्लाह बना दो, और उनको मानो उनको ऐसा इनकार ना करो कि उनके साथ बेअदबी और बदतमीजी हो जाए। اور توحید تفصیلی جو ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اوپر جو تفصیلی کلام ہے، وہ تو مشائق حقہ ہی کا حق بنتا ہے، وہ انہی کو پتا ہے اس کو صحیح معنی. اور جس درجے میں کامل توحید کسی کے پاس ہوگی اس کا ایمان اتنا کامل ہے، اور جس کا ایمان جتنا کامل ہوگا انہیں اتنا زیادہ مقرب ہوگا، بغیر حساب کتاب کی جنت میں. دیکھیں جناب زاہدہ کون رہے گا پیش پیش، ہمارے والد صاحب کا شعر ہے. دیکھیں جناب زاہدہ کون رہے گا پیش پیش، کہتا رہے تو ربنا میں ہا و ہو جو ہو سو ہو. تو ربنا ربنا کہتا رہنا اور میں ہو ہو کا نعرہ لگاتا رہوں گا، تو تجھے پتا چلے گا کہ آگے کون ہے پیچھے کون ہے. مطلب وہ معرفت کو اور توحید کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ توحید کے کمال میں کتنی برکت ہے. دیکھیں جناب زاہدہ کون رہے گا پیش پیش، کہتا رہے تو ربنا، تو یا ربی کہتا رہے، میں ہو ہو کا ہی نعرہ لگاتا رہوں گا. کیونکہ وہاں پہ اللہ ہو میں جو ہو ہے اصل، وہاں سے شروع ہے چیز، وہ اصل جس میں توحید ہے خالص کامل، جس میں غیر کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہو رہتا ہے. ادراک بھی نہیں رہتا غیر کا، تصور بھی نہیں رہتا غیر کا، غیر کی فنائیت ہو جاتی ہے پوری، بالکل غیر باقی نہیں رہتا. ما سوى اللہ جو ہے، اللہ کا جو غیر ہے، وہ فہم کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے سب ختم ہو جاتا ہے، تب جا کے وہ ہو کے نعرے پہ آتا ہے آدمی. مگر بعض نقل کرتے خالی، بعض پہنچتے اس جگہ پہ. تو ناقل تو ناقل ہے، اس کا اعتبار نہیں، لیکن جو اس مقام پہ پہنچے وہ بہت بڑی بات ہوتی. اگر کوئی اس درجے کا ہو موحد کامل، ایک بات آئی تھی ذہن میں لیکن وہ بات مناسب نہیں ہے. کانو لا یکتبون، وہ لوگ ایک تو داغ نہیں لگاتے، دوسرے یہ کہ وہ رقیات نہیں کرتے، تیسرے یہ کہ وہ شگون نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے. وعلى ربهم يتوكلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. فقام الیہ عکاشہ بن محصن، عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، دعا کیجئے اے اللہ مجھے میرے بارے میں کہ اللہ پاک مجھے ان 70,000 میں سے بنا دے. فقال اللہم اجعلہ منہم، حضور نے فرمایا کہ یا اللہ اس کو ان میں سے بنا دے. پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. فرمایا ہو گیا کام، سبقہ کبھی ہاں عکاشہ، عکاشہ آگے نکل گئے. وہ تو ایک بات، ایک قبولیت دعا کا ٹائم تھا، ایک آدمی نے کہا دیں، یہ تھوڑی ہے کہ لائن لگاؤ تم سارے میں دعا کروں، سب کے لیے یہ ترتیب ہے. ایک خاص موقع تھا. سرہ حدیث بہت سی باتیں کہیں اس میں کہ آخر کیا سنس بنتا ہے اس بات کا کہ عکاشہ کے لیے تو دعا کر دی حضور نے، اور دوسرے نے پھر دوسرے نے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ بس ہو گیا اب نہیں ہوتا، وہ محنت کرو. عکاشہ کو محنت کی ضرورت نہیں تھی، وہ گولڈن چانس مل گیا ان کو، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے محنت کر لی تھی، حضور کو اس کا اندازہ تھا. ظاہر ہے کہ محنت تو دوسروں نے بھی یقیناً کی تھی، صحابہ تو سب ہی ایسے تھے، خلفاء راشدین بیٹھے تھے سب سے. زیادہ تر شارحین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور عکاشہ نے درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کھل گئی اللہ کی وجہ سے کہ اس وقت آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی. وہ ساعت تھی قبولیت دعا کی، وہ جو لمحہ تھا وہ قبولیت دعا کا لمحہ تھا، حضور نے دعا کر دی. اب بعد والوں نے جو کہا تو وہ قبولیت دعا کا لمحہ نہیں تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ بس اس نے لے لیا، جو ٹائم آیا تھا وہ لے لیا. ان ربکم نفحات، تمہارے پروردگار کے لیے بعض مرتبہ ایک خاص، کیا بولیں گے آپ لوگ اس کو، مومنٹ بولیں گے، ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اسپیشل لمحہ، इंग्लिश में भी लम्हाई बोलते हैं, वो बोलना चाह रहा था मैं। अल्लाह फतअर्रदू लहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसके लिए अपने को तैयार रखो। बाज़ मरतबा अगर आदमी उस लम्हे में आ गया तो बड़ा बड़ा उसका काम निकल जाता है। तो वो एक मौके की बात होती है, चांस की बात होती है। जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा हुजूर के सामने बैठे हुए थे, हुजूर ने कहा कि अब जो हदीस में बयान कर रहा हूँ, जो आदमी अपनी चादर फैलाए, जब मेरी हदीस में बयान करना खत्म हो जाए तो उसको लपेट के अपने सीने से लगा ले, तो वो कभी भूलेगा नहीं। क्यों? इत्तेफाक से ये बात जब हुजूर की दुआ मुबारक से निकली, अबू हुरैरा थे खाली वहां पे, जैसे हुजूर की बात खत्म हुई अबू हुरैरा ने चादर लिया और लगा लिया। बस कहते हैं कि उसके बाद से मैं भूला ही नहीं फिर कोई बात, बस वो चांस आया हुआ था, एक लक्की लॉटरी उठना जिसको बोलते हैं ना, लॉटरी का टाइम था, असल में उठ गई उनकी लॉटरी, यहाँ पे काशा की लॉटरी उठ गई। एक तशरीह इसकी ये भी की गई है कि दूसरे आदमी ने जो मुतालबा किया था वो मुखलिस नहीं था, क्योंकि मुनाफिकीन भी बहुत से आके बैठ जाते थे हुजूर के पास, वो आपको मालूम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा किसी का आयब एकदम सामने खोल देने की नहीं थी, इसलिए आपने टाल दिया बात को। ये भी शरवाह बुखारी, जो बुखारी शरीफ के जो शारे हैं उसमें से एक साहब ने ये भी बयान किया। और ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत नहीं है कि अब ज़ाहिर है कि अगर दूसरे ने दरख्वास्त की तो तीसरे ने क्या कसूर किया, तीसरा करेगा तो चौथे ने क्या कसूर किया। तो फिर जो निज़ाम है इसका कि इसको गैब में रखा जाए और लोगों को कोशिश पर डाला जाए वो तो डिस्टर्ब ही हो जाएगा, फिर वैसा नहीं होता उमूमन। حدثنا معاذ بن وسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمره هم 70,000 تضيء وجوههم اضاءه القمر ليله البدر. حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ داخل ہوں گے جنت میں میری امت میں سے 70 ایسے ہزار कि जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते हुए होंगे। 70,000 तो ऐसे होंगे कि उन पर हिसाब किताब नहीं होगा, और उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे, वो भी 14वीं रात के चांद की तरह से, और वो जन्नत में जाएंगे। इसी हदीस की मजीद तशरी आगे इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हदसना सईद बिन अबी मरियम قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنه في ام امتي 70,000 او قال 700,000. چلو آگے کام اور بن گیا. شک فی احدہما متماسکین آخذ بعضهم ببعض حتی يدخل اولهم واخرهم الجنہ ووجوههم على ضوء القمر لیلۃ البدر. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور بالضرور داخل ہوں گے جنت میں میری امت میں سے 70,000 یا 7,00,000 या 7,00,000, क्योंकि उन 70,000 में से एक एक के साथ 70,000 का भी जोड़ कहीं आया हुआ है। उनमें से बात ऐसे भी हो सकते हैं कि हर एक 70,000 को भी खींच ले, इतने पावरफुल होंगे वो। तो रावी को शक हो गया कि आपने 7,00,000 का लफ्ज़ फरमाया या 70,000 का फरमाया, और एक दूसरे को पकड़े हुए होंगे। मुतमासिकीन, अब आख मुतमासिकीन एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ सफ बनाए हुए होंगे, आखिर उन बाद हम बेबाबिन, और एक दूसरे को पकड़े हुए भी होंगे, यहाँ तक कि उनका पहला और उनका आखिरी सब जन्नत में चले जाएंगे, और उनके चेहरे चांद की तरह के चमकते हुए होंगे, जो वो चांद जो लैलतुल बदर का होता है, मुकम्मल चांद का वाला जो दिन जो रात होती है उस वक्त। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلودا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ایک مؤذن ان کے درمیان میں کھڑا ہوگا، دونوں کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوگا، ایک فرشتہ، اور کہے گا کہ اے جہنمیو اب موت نہیں آئے گی، और ऐ जन्नतियों, अब मौत नहीं आएगी, खुलूदन हमेशा रहोगी। आखिरत के अंदर जो सबसे यानी जन्नत आखिरत की खास बातों में से जो बहुत ही अहम खास बात है वो ये कि वहाँ खुलूद है। खुलूद का मतलब ये है कि अनलिमिट पना है, मौत नहीं है वहाँ पर। 100 साल में, 1000 साल में, 5000 साल में, 10000 साल में मर जाएंगे। और उसके बिलमुकाबिल जन्नत दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा, दुनिया का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है समझ लीजिए, वो मौत का है, सनाइत का, खत्म हो जाने का। दुनिया भी खत्म, और दुनिया तो खैर अपने टाइम पे खत्म होगी, चूंकि ज्यादा दुनिया बड़ी है तो उसका टाइम भी जरा बड़ा है। अपन छोटे थे 6 फीट के, तो अपना टाइम भी छोटा है, 5 फीट 6 फीट के अंदर क्या टाइम रहेगा। तो यह है कि वो एकदम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे फना है, चाहे खूब खा पी के हो, चाहे भूखे मर के हो, इज्जत के साथ हो कि बेइज्जती के साथ हो, गरीबी में हो कि अमीरी के अंदर, कमा के हो कि बेकमा के हो, शादी हो के हो कि बेशादी हो के हो, औलाद हो के हो कि बे औलाद हो के हो, तंदुरुस्ती के साथ हो कि बीमारी के, फना है यहाँ पे खत्म। ये फनाइत का तसव्वुर जो है ये दिल को नहीं लगाने वाली चीज है। जिसको फना होना है उसे दिल भी नहीं लगना। अल्लाह हुब्बुल आफिलीन, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद सितारों को देखा, कहने लगे हो सकता है ये मेरे रब हों। जब सूरज निकला और सारे सितारे गायब हो गए, कहने लगे जो जो निकले एक वक्त फिर गायब हो जाए एक वक्त, जिस पर कोई दूसरा गालिब आ जाए वो इस काबिल नहीं है कि उसको खुदा बना, उससे मोहब्बत की जाए। अल्लाह हुब्बुल आफिलीन, मैं ये बुझने वालों और छुपने वालों से मोहब्बत नहीं कर सकता। भाई या तो आशिकारा हो जाओ, सब पे गालिब हो के बताओ। ये क्या है कि तुम रात में निकल के तुम चमकने लगे, तुम सूरज निकला तो भाग गए, तुम पर कोई दूसरा गालिब आ गया। तुम अपनी जगह पे होंगे लेकिन गालिब तो दूसरा आ ही गया। कहने के मैं इसको पसंद नहीं करता। इस दुनिया के अंदर फनाइत है, और ये आदमी को अपने दिल को फारिग करने के लिए बस है अगर आदमी इसको सोचा करे। उसने फरमाया कि जो आदमी 20 मरतबा इस मजमून को रोजाना सोचेगा उसको शहादत का मरतबा मिलेगा। क्योंकि जो आदमी 20 मरतबा ये अपने दिन में ये दिमाग में लाता रहेगा कि यहाँ पे खत्म हो जाना है, तो फिर यहाँ की चीजों से वो ज्यादा मजे नहीं ले सकता, तबीयत तो उसकी ठंडी हो जाती है। और जो आदमी इस दुनिया की चीजों से मजे न लेने वाला हो तो वही आदमी आखिरत के लिए कुछ कर सकता है। इसलिए उसने अक्सर जिक्र हाजमी लज्जात, जो लज्जतों को खत्म करने वाली है, कम कर देने वाली है, उसका जिक्र कसरत से करो, और वो मौत है। जन्नती जन्नत में जाने के बाद में ये बता चलेगा उनको कि मौत नहीं है, तो बताओ क्या खुशी उनको होगी कि वो मरेंगे नहीं, कभी नहीं आते। और जहन्नमी जहन्नम में जाने के बाद में जब उनको ये पता चलेगा कि मौत नहीं है, तो बताओ क्या मुसीबत होगी। इसलिए इनको अबाब और रिकाफ इसीलिए कहते हैं कि संजीदगी से अगर आदमी सोचे सिंसियरली, तो ये सोचे बगैर नहीं रह सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। असल तो यही है कि आदमी आखिरत की तैयारी करे और जहन्नम से बचे और उसकी कोशिश में लगा रहे, जन्नत मिल जाए उसकी कोशिश में लगा रहे। सिफतुल जन्नति वन्नार, जन्नत और जहन्नम की कैफियत जो बुखारी शरीफ में है। बुखारी तो ऐसी चीज़ों को बहुत कम जिक्र करते हैं। ये जो हदीस की किताबें अपने पास है ना, इसमें मसले मसाइल ज़्यादा हैं, खास फजाइल वाली किताबें नहीं होती है कि चीज़ों के फजाइल वो ज़्यादा है, वो थोड़े दूसरे हदीसें आती हैं इसमें। फजाइल वाली के अंदर मसाइल वाली चीज़ें नहीं आती, अलग अलग टॉपिक्स हैं तो लिखने का तरीका भी अलग है। मगर चूंकि ये हिस्सा, ये अकीदों का हिस्सा है और उसका अरिकाक का हिस्सा है, तो वो भी थोड़ी आ ही जाते हैं। فقال ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اول طعام ياكله اهل الجنه زياده كبد حوت. حضرت ابو سعيد نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کھانا جو جنت والے کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا حصہ ہوگا، مچھلی کا لیور جو ہے وہ کھلایا جائے گا اسپیشل طریقے پہ، یعنی اس میں بسان دسان وہ ہوں گے سب، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے یہ روایت آ چکی ہے کہ اصل میں یہ حشر نہیں ہونے والا ہے، मैदान हशर में जो जन्नती होंगे उनको ही खिलाएंगे। ये थोड़ी है कि सब जहन्नमियों की, जन्नतियों की सबकी दावत हो रही है वहाँ पे, जहन्नमियों को नहीं मिलने वाला है। जो जन्नत में जाने के काबिल हैं उनके लिए ही कपड़ों का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, रहाइश का इंतज़ाम मैदान हशर में हो जाएगा टेम्पररी से ही। मगर वो टेम्पररी भी कोई टेम्पररी नहीं है, 50,000 साल का दिन है वो, कितना बड़ा टेम्पररी है देखो आप, वहाँ के हिसाब से वो टेम्पररी ही है 50,000 साल। उसमें खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए और शेड भी चाहिए, और उसके साथ पानी भी चाहिए। तो वहां अल्लाह तबारक व तआला जो जन्नत में जाने के काबिल होंगे उनको यहीं जमीन की रोटी बना के, और ज्यादा तो कभी दिल हूत से यानी मछली के जिगर के से जो है ना गजा दे देंगे, सबसे पहले उनको खाने को यह मिलेगा। बैल होगा, बैल मिलेगा और उसके साथ जो है ना मछली मिलेगी। गाय को नहीं काटना बोलते हिंदू, यहाँ पे तो कटरी कटरी वहां पे भी उसको कटना ही है गरीब को, सबसे पहले वही काट के खिलाएंगे अल्लाह ताला। भाई बैल गाय एक ही बात है ना, मतलब ये है कि मियाँ हुआ तो मेल हुआ तो क्या फीमेल हुआ तो एक ही बात है। जब गाय उनकी माता है तो बैल तो बाप है ही। फिर एक मरतबा इम्तिहान में ये सवाल लिख के भेजा वहां पे कि साहब गौ माता के बारे में कुछ लिखो, क्या है तुम क्या जानते हो गौ माता के बारे में, गौ माता। तो एक स्टूडेंट ने लिख दिया कि गौ हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, इतना ही आता है कि गौ हमारी माता है। तो जो इम्तिहान लेने वाला था टीचर, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि जब गौ तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। तुमको नंबर देना ही फजूल है, पाप है, नंबर देना पाप है, क्योंकि बैल ही तुम्हारा बाप है। حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن ابي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء، واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. حد ابو رجاء عمران سے نقل کرتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جھانک کر دیکھا جنت میں، مطلع ہوا میں और झांक कर देखने के माना वे आते हैं, मैंने देखा जन्नत को, यह मतलब बनता है। तो मैंने देखा कि जन्नतियों की बड़ी तादाद फुकरा की है, ज्यादा क्वांटिटी जन्नत में जाने वालों की, खूब पैसे बनाने वालों की नहीं है, फकीरों की है, गुरबा की है। क्योंकि फकीर आदमी दुनिया की मोहब्बत से खाली होता है, फकीर आदमी के पास टाइम होता है दीन का काम करने का, और दुनिया के अंदर जो जितना कम मशगूल रहा उतना ज्यादा हिसाब में भी कम मशगूल होगा। मन रज़िया बिल माल अल-क़लील रज़ियल्लाहु बिल अमल अल-क़लील, जो थोड़े माल पे यहाँ खुश हो जाएगा, थोड़े अमल पे अल्लाह वहाँ खुश हो जाएगा उससे। फुकरा जो है ना वो ज्यादा तादाद में जाएंगे। और मैं जहन्नम में देखा तो मैंने देखा कि जहन्नमियों की अक्सर तादाद औरतों की है, औरतें वहां पे गालिब हैं ज्यादा हैं, यहाँ पे फकीर ज्यादा हैं। अन उसामा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال قمت على باب الجنه فكان عامه من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء. हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमा रहे हैं कि मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ तो मैंने देखा आम तौर पर जो उसमें दाखिल हो रहे थे वो मसाकीन दाखिल हो रहे थे। इसको देखो मिस्कीन गरीब, गरीब गरीबों के तो वारे नियारे हुए नहीं, जा रहे हैं सीधा जन्नत में, मज़ेदार। वो अस्हाबुल जद और पैसे वाले महबूसून अपने हिसाब में फंसे हुए थे, महबूस मैंने रुके हुए हैं, उनसे कहा कि पहले हिसाब दो फिर उसके बाद जाना मरो। अब एक एक चीज़ का हिसाब हो रहा, पूरे बिल पेश करो। अच्छा यहाँ पे खाली खर्चे के बिल नहीं है, लाने के भी हैं, ले जाने के भी हैं, अब कमाने के भी हैं, खर्च करने के भी हैं, पूरी तफसील। उसमें अहले हकूक आ जाएंगे, असाब हकूक होंगे, ये नाजायज मिला इसको वापस करा नहीं करा, वो नाजायज लिया था इसको वापस किया नहीं किया, वो तो लंबा काम है पूरा। गैर अन्न असहाब नार कद उमिर बिहिम इलन नार, और फिर यह है कि असहाब नार को जहन्नम की तरफ ले जाए जाने का हुक्म दिया गया तो मैं दरवाजे पे जहन्नम के खड़ा हो गया। हुज़ूर फरमाते हैं फैज़ा आम मत मन दखला हनसा, आम तौर पर जो उसमें दाखिल हो रही थी वो औरतें, जिसको देखो लेडीज के काफिले के काफिले जा रहे हैं। حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن ابيه انه حدثه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صار اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنه والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا اهل الجنه لا موت يا اهل النار لا موت فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو جی اب الموت موت کو لایا جائے گا. موت کو ایک مینڈے ایک روایت میں دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا, لیم کی شکل میں لایا جائے گا. یہاں تک کہ جنت اور جہنم کے درمیان ان کو کر دی اس کو رکھ کر دیا جائے گا. اور یہاں یہ تفصیل نہیں ہے, ایک فرشتہ پھر اعلان کرے گا تو سارے جنتی متوجہ ہو جائیں گے اور ایک فرشتہ ادھر اعلان کرے گا تو سارے جہنمی متوجہ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے, تو کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے, تو کہیں گے کہ یہ موت ہے. ثم یذبح پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. ثم ینادی منادن پھر پکارنے والا پکارے گا اے جنتیو اب موت نہیں آئے گی چونکہ اس کو ہی مار دیا گیا ہے, اور اے جہنمیو اب موت نہیں آئے گی کیونکہ اس کو ہی ختم کر دیا گیا. تو جو جنت والے ہوں گے ان کی خوشیوں میں اضافے سے اضافے ہو جائیں گے, ان کی خوشیاں اور بڑھ جائیں گی, اور جو جہنم والے ہوں گے ان کے رنج میں اور حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ ہائے یہ تو مصیبت ہم سمجھ رہے تھے کہ کہیں جا کے اینڈ ہونے والی ہے, کہیں پہ بھی اینڈ ہوئی ہے کہ نہیں. دیکھنے کے اعتبار سے بہت معمولی سا ہے کہ آدمی دنیا میں ٹائم پاس کر دیتا ہے, لیکن بہت ہی سیریس لینے والی بات ہے کہ خدا نخواستہ ہزار بار خدا نخواستہ بغیر توبہ کے بغیر اصلاح کے بغیر اپنا ایمان کمپلیٹ کیے کہ بغیر اپنا دین مکمل کیے کہ مر جانا اگر پڑ گیا بہت رسکی چیز ہے, بہت بھی بہت رسکی ہے. اب موت کی کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه يقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك قالوا يا ربي واي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں سے کہ اے جنتیوں, اللہ تعالیٰ آواز دیں گے, جنتی کہیں گے کہ لبیک ربنا وسعدیک, پروردگار ہم حاضر ہیں. فیقول هل رضیتم, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم خوش ہو. اللہ تو جنتی کہیں گے کہ کیا ہوا ہم کو کہ ہم خوش نہ ہوں, اور آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا ہے جو آپ نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا, اتنا تو سب کچھ آپ نے دیا ہوا ہے اور خوش نہیں ہونے کی کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے اور اچھی چیز میں دینا چاہ رہا ہوں. انا اعطیکم افضل من ذلک, جنتی کہیں گے کہ پروردگار اس سے افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اپنی خوشنودی تمہارے لیے طے کر دیتا ہوں, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. فلا اسخط علیکم ابدا, اب اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا, اور میں نے طے کر دیا اب تمہارے لیے کہ میں تمہارے لیے تم سے خوش ہوں. اتار دیا میں نے تمہارے لیے اپنی خوشنودی کو. اور واقعتاً یہ سن کر جنتی طرب میں آ جائیں گے اور کیفیت میں آ جائیں گے کہ وہ جنت سے زیادہ ان کے لیے خوشی کی بات ہوگی, کہ چونکہ جنت میں رہنا جنت کا ملنا یہ سارا کا مسئلہ اللہ کی رضا سے طے ہے, ان کی رضوان کی جگہ ہے. جب انہوں نے وہ طے کر دیا, اللہ پاک طے کر دیں گے کہ اب میں نے اپنی رضا تمہارے لیے طے کر دی, اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا, تو وہ جو تسلی ہو جائے گی, سکون ہو جائے گا نا کہ یار اس میں سے کہیں چھوٹ نہ جائے, پھر بھی بھگا نہ دیں. ایک مرتبہ آدم کو تو تبخا دیا تھا, بابا آدم کو تو ایک مرتبہ بھیج ہی دیا تھا وہاں سے, تو یار کہیں اپنی بھی باری نہ آ جائے. وہ تو آدم تھے بےچارے, اللہ کے پیغمبر اللہ کے پہلے بندے, ہم تو جیسے بھی ہم ہیں, پتہ نہیں وہاں جا کے کیا بدتمیزی کریں, پھر اللہ نے کہا چلو نکلو یہاں سے. تو یہ ڈر سا جو لگا ہوا رہے گا وہ ڈر نکل جائے گا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بس احل علیکم رضوان, میں اپنی خوشنودی طے کر رہا ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور اللہ پاک یہ جو اعلان کریں گے تو اپنے علم کے اعتبار سے کریں گے, یہ مطلب نہیں ہے کہ رائٹ ناؤ سچویشن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں अब बाद में ये बदतमीजी करेगा तो फिर निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने ये तय करने का मतलब ये होगा कि तुम्हारे बारे में अब ये है कि इसके बाद में तुम्हारे साथ फड्डा होने वाला नहीं है, मेरे साथ मेरा तुम्हारा कोई फड्डा होने वाला नहीं है। तो वो जो तसल्ली होगी और वो जो खुशी होगी तो जन्नत की नेमतों से भी अफजल होगी अल्लाह के बयान के मुताबिक। क्योंकि सारी नेमतों का मजा डिपेंड करता है इसी पर, क्योंकि छुट जाने का जब तक अंदेशा रहता है तो उसमें क्या मजा है, कुछ भी नहीं। أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمى حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. ایک جنت ہے، جنت کی یہ کیفیت ہے، ادھر دوسری طرف کیا ہو رہا وہ دیکھو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کے دو مونڈوں کے درمیان 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہے تیز رفتار سواری کے لیے. کوئی تیز رفتار سواری اگر جائے تو کافر کے ایک مونڈے سے لے کے دو مونڈے تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 3 دن میں جا کے طے ہوگا. جو تیز سے تیز بھاگنے والا گھوڑا ہے اس کو 3 دن مسلسل بھگایا جائے تو کافر کے ایک ایک شولڈر سے لے کے وہ دوسرے شولڈر تک پہنچے گا. دوسرے کافر کے شولڈر تک نہیں، اسی کے دوسرے شولڈر تک، رائٹ سے لے کے لیفٹ. اب ایسے کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو جلیں گا کتنا اس کو. جہنم ایسی جگہ ہے کہ یہ پروانوں کو اگر ڈال دیے تو جانے سے پہلے ہی فنش ہو جاتے. یہ 6-6 فٹ کی 8-8 فٹ کی اگر ڈال دیے ابھی تو وہ تو جب اس میں ڈالیں گے تو اتنا اس میں شعلہ ہے اور اتنی تیزی ہے، اتنی گرمی ہے کہ وہ تو وہیں ختم ہو جائیں گے. وہ ڈالنے کو اس کو کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں جہنم کو. تو ایک ایک جہنمی کو جو پھر بنایا جائے گا اس کے حساب سے ہی جو ہے نا اس کا سائز کیا جائے گا، اس کا مونڈا اتنا بڑا ہوگا. شارح بخاری جو ہیں اس کی شرح میں پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں سے یہ فرمایا کہ ضرس الکافر یوم القیامت اعظم من احد، کافر کی داڑ قیامت کے دن احد پہاڑ سے بڑی ہوگی. اس کا داڑ جو ہے نا احد پہاڑ سے بڑا ہوگا، ایک ایک داڑ. یعظمون لتمتلی منہم ولیذیق العذاب، اتنے بڑے اس لیے کیے جائیں گے تاکہ عذاب کا مزہ ان کو چکھایا جائے اور عذاب سے وہ اور ان ایسے جہنمیوں سے وہ جہنم بھر جائے. کافر کی جو جلد ہوگی وہ 42 ہاتھ کی ہوگی، جلد کا جو موٹاپن ہے موٹاپا ہے وہ 42 ہاتھ کا ہوگا. اثنان و اربعون ذراعا وفخذه مثل ورقان، ایک پہاڑی کا نام ہے. وقال اسحاق بن ابراهيم اخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب بن ابي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. فسهل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے، سوار اس کے سائے کے اندر چلے گا 100 سال تک، پھر بھی اس درخت کو ختم نہیں کر سکے گا. جنت کے درختوں کی کیفیت یہ ہے کہ اگر درخت کو درخت کے سائے میں درخت کے نیچے سے سب مسافر کو گزارا جائے اور 100 سال گزارا جائے تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا. قال ابو حازم فحدثت به النعمان بن ابي عياش قال حدثني ابي سعيد ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجره. ہر جنت کے ہر درخت کی کیفیت نہیں ہے، جنت میں ایک ایسے بھی درختوں کی قسم ہے، ایسے بھی درخت ہیں. جیسے بعض دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ فضیلت طوبہ کی ہے، طوبہ ایک درخت کا نام ہے جنت کے. یسیر الراکب الجواد المضمر السریع، جب یہ کہتے ہیں کہ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو جو اوپر والی ہے نعمان ابن ابی عیاش سے میں نے سنایا، تو پھر انہوں نے حضرت ابو سعید کی دوسری روایت مجھے سنائی، وہ سہل ابن سعد کی ہے یا ابو سعید کی ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو فرمایا تو اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا के सवार जो के घोड़े वाला हो, एक ऊंट की भी सवारी होती है, डुक्कू 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 डुक, एक घोड़े की होती है। और फिर ये फरमाया कि अल मुदम्मर, वो घोड़ा जिसको सधाया गया हो तेज दौड़ने के लिए। मुजम्मर की बड़ी तफसील लिखी हुई है कि घोड़े को, क्योंकि घोड़ों के तो माहिरीन होते थे अरब, तो पहले 40 दिन उनको मुसलसिल खिलाते हैं, फिर उसके बाद में जो है ना उसका खाना बंद करके उसको ऊँट पे लाते हैं, यानी बकदरे हयात जिंदगी पर लेके आते हैं। इतना छरेरा हो जाता है वो कि फिर किसी से पीछे नहीं हटता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो घोड़े आते थे, और घोड़ों की आप जो रेस लगवाते थे, रेस मुराद ये सट्टे वाली रेस नहीं, मैदान जिहाद में काम आने के लिए मुकाबले वगैरह करवाते थे, तो उसमें मुदम्मर के लिए 7 मील की जगह थी और गैर मुदम्मर आम घोड़ों के वास्ते 3 मील की जगह थी, 1 मील से लेके 3 मील तक। जो मुकाबले करवाते थे कि कौन तेज दौड़ाने वाला है, कौन बाहिर है, कौन नंगी पीठ पे जा सकता है, किसको जिम की जरूरत है, तो एक काम होता था बाजाब्ता मैदान, मतलब जंगी तैयारियों में से का वो एक हिस्सा था। तो जवाब मुदम्मर जो होता है उसके लिए 7 मील की रेस थी, इसमें मुकाबला करवाया जाता है। जवाब गैर मुदम्मर जो है वो छोट, तो 1 मील से लेके 2 मील 3 मील तक होता था। और उसने फरमाया कि वो जवाब मुदम्मर और तेज दौड़ने वाला वो भी चलता रहे 100 साल तक, माँ यख्तौहा, तो भी उस जन्नत के साए को खत्म नहीं करेगा। وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. حضرت سهل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اہل جنت جنت کے اندر بالا خانوں کو جنت کی اونچی منزلوں کو، جنت کے اونچے اونچے یعنی اونچے اپارٹمنٹ کو جو ہوتے ہیں اس کے اندر، उनको ऐसे देखेंगे जैसे कि तुम सितारों को देखते हो आसमान में। ऐसा नहीं होगा कि 100 मंजिला है, 50 मंजिला है, 70 मंजिला है। तो जो गुरफ हैं, जो बालाखाने होंगे, तो वो बालाखाने इस टाइप के नहीं होंगे, बल्कि वो इस टाइप के होंगे कि लोग जो है ना ऐसे देखेंगे उनको जैसे जमीन से सितारे देखे जाते हैं। ويزيد فيه كما ترون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں اس کا اضافہ موجود ہے کہ جنت والوں کے بالا خانے ایسے نظر آئیں گے ایک دوسرے کو جیسا کہ افق میں غروب ہونے والا مشرقی افق میں اور مغربی افق میں غروب ہونے والے ستارے کو لوگ دیکھتے ہیں، ایسا نظر آئیں گے اتنی دور اور اتنے اونچے۔ وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن ابی عمران قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الله تعالى لا أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به، فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں میں سے جو سب سے کم عذاب والا ہوگا اس سے قیامت میں فرمائیں گے، جہنم میں جو سب سے کم عذاب والا ہوگا اس سے فرمائیں گے کہ اگر زمین بھر کر کوئی دولت تجھ کو دے دی جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے تو دے سکتا ہے، تھوڑے پیسے نہیں بلکہ زمین بھر کر، زمین میں جتنی دولت آ سکتی ہے اس زمین بھر کی دولت کو اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کے عذاب سے تو فدیے میں دے دے گا اگر تجھے وہ چیز دی جائے، فیقول نعم، تو کہے گا بالکل دے دوں گا، فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اردت منک اهون من هذا وانت فی صلب آدم، میں نے بہت معمولی سی چیز تجھ سے مانگی تھی جب تو آدم کی پیٹ میں تھا، اور وہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ شریک مت کرنا، میں نے صرف ایمان کا مطالبہ کیا تھا دنیا میں، زمین پر پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا، آج عذاب جب میرا دیکھ رہا ہے تو پورے زمین پر دولت کو فدیے میں دینے کو تیار ہے، لیکن جب اس عذاب کی خبر تجھے دی گئی تھی تو اس وقت میں نے جو تجھ سے ڈیمانڈ کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، وہ صرف یہ تھا کہ تو ایمان اختیار کر لے، کافر مت رہے، غیر مسلم مت رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اردت منک اهون من هذا، میں نے تو اس سے بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پیٹ میں تھا کہ تو میرے ساتھ شریک نہ کرنا، فابیت الا ان تشرک بی، مگر تو نے انکار کیا इसके बगैर तू रह नहीं सका कि तूने मेरे साथ शिर्क किया, पर वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान कामिल अता फरमाए और जहन्नम से बचाए और जन्नत में दाखिला मुकद्दर फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم.